पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन ने सानवी को फिल्म देखने के लिए रुकने को कहा और वो मान गई। आर्यन चाहता था कि सानवी चली जाए, पर जय के कहने पर वो रुकने को कहता है। जय की डिमांड पर लॉन में फिल्म लगाई जाती है और तीनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। फिल्म देखते वक्त जय को वॉशरूम जाना होता है, तब आर्यन सानवी से खाना बनाने के बारे में पूछता है। सानवी के जाने के बाद आर्यन को पता चलता है कि जय ने कमरे में खिलौने बिखेरे हैं। दूसरी तरफ अयान के घर लौटने पर बेगम साहिबा जोया को उसके सामने ना आने के लिए कहती हैं, पर जोया की नज़र अचानक अयान पर पड़ती है और अयान भी उसे देखता रह जाता है। नाउ नेक्स्ट, अयान सोफे पर बैठ गया था। उसकी अम्मी और अब्बा भी सोफे पर उसके पास आकर बैठ गए। उसके दोनों भाई भी वहीं मौजूद थे। नुसरत और उसकी दोनों भाभियाँ भी आकर बैठ चुकी थीं। नौकर चाय की ट्रे लेकर आ गया और सबके सामने कप रख दिए। सभी धीरे धीरे बातें करने लगे। असल में किसी को भी अयान के पास बैठने की खास तमन्ना नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी समय बाद घर आया था और बीमार भी रहा था, इसी वजह से सब उसके पास बैठ गए थे। अयान ने इधर उधर नज़र घुमाई और पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं, आज तो संडे है। उसकी बड़ी भाभी ने जवाब दिया, दानिश अपने किसी दोस्त के बर्थडे में गया है। फिर थोड़ी सोचकर बोली, और ज़ुबैर शायद अपने कमरे में होगा, उन्हें पता नहीं चला होगा कि तुम आ गए हो, वरना सुबह से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। छोटी भाभी सहर ने बताया, फिज़ा और यारा भी अपने कमरे में होंगी। अयान ने पूछा, और सैफ कहाँ गया? उसकी सवाल पर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे हैरान हो कि अयान इतनी बारीकी से सबके बारे में पूछ रहा है। आरिफ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सबके कमरों में मैसेज भेज दिया है, थोड़ी देर में सब नीचे आ जाएंगे। वाकई कुछ ही देर में सभी लोग नीचे लिविंग रूम में अयान के पास पहुंच गए। कैसे हो? सबको देखकर अयान अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब ज़ुबैर उसके पास आया तो उसने उसे गले लगा लिया। कैसे हो तुम? ज़ुबैर कुछ कह पाता उससे पहले ही अयान ने खुद ही कह दिया, मैं ठीक हूँ। फिर उसकी नज़र सारा, ज़ारा और फिज़ा पर गई। अरे तुम लोग मेरे गले नहीं लगोगी, मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों लड़कियाँ मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ीं और एक एक करके गले लग गईं। चाचू आप कैसे हैं? उन्होंने पूछा। अयान ने प्यार से कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग बताओ। मगर सच कहूँ, मेरा वहाँ तुम लोगों के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता था, बहुत मुश्किल भरे दिन थे। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। असल में अयान से उनका कभी ज़्यादा वास्ता नहीं रहा था, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और किसी से खास मतलब नहीं रखता था, मगर आज उसके अंदाज़ में कुछ अलग था, अपनापन, नरमी और मोहब्बत। अयान के इस बदले हुए अंदाज़ को देखकर उसकी अम्मी और अब्बू ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, हंस बोल रहे हैं। इसी दौरान नावेद साहब की नज़र जोया के कमरे की तरफ गई, जो लिविंग रूम के एक साइड में था, दरवाज़ा बंद था। उनके मन में ये ख्याल आया कि जब पूरी फैमिली यहाँ बैठी है तो वो बिन माँ बाप की बच्ची अपने कमरे में अकेली क्यों है, ये सोचकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो चाचू आपको तो रेस्ट करना होगा, डॉक्टर ने कुछ टाइम तक ध्यान रखने के लिए कहा होगा ना? ज़ुबैर ने बैठते ही बात छेड़ी। ज़ुबैर जो तकरीबन अयान से 3 साल छोटा था, मगर काफ़ी समझदार लड़का था। वो बिजनेस संभालने में अपने डैड के साथ लगा हुआ था, उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं थी और वैसे भी वो बहुत खुश मिजाज था, शायद इस घर में सबसे अलग। हाँ बिल्कुल, अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, अयान ने आराम से जवाब दिया। फिर अयान ने अपनी तीनों भतीजियों सारा, ज़ारा और फिज़ा की तरफ देखा। इनमें से ज़ारा सबसे बड़ी थी, शायान भाई की बेटी, वो ज़ुबैर से छोटी थी, तकरीबन 23 साल की, और MBA कर रही थी। उसके बाद फिज़ा का नंबर था, जो अभी कॉलेज जा रही थी, और सारा, जो फिज़ा से कुछ महीने छोटी थी, BSc कर रही थी। दानिश सारा से बड़ा था, मगर उसकी पढ़ाई थी पूरी नहीं हुई थी, वो भी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। सैफ, सारा और फिज़ा दोनों बहनों से छोटा, शायान भाई का बेटा था, जो अभी +2 में पढ़ रहा था। अयान अपने छोटे छोटे भतीजे भतीजियों से काफ़ी देर बातें करता रहा और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहा। चलो तुम लोग बातें करो, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, आरिफ अपनी जगह से खड़ा हो गया। आप लोगों ने तो लंच भी नहीं किया, पहले लंच कर लेते, नुसरत, उसकी बेगम बोली। नहीं, हमें भूख नहीं है, शयान से पूछ लो, उसे भी शायद भूख ना हो, तुम्हें भी अपने लंच कर लेना चाहिए, आरिफ ने अयान से कहा। हाँ मुझे कुछ हल्का फुल्का खाने को ला दो, वो बोला, और खाने के बाद अपने कमरे में रेस्ट करने चला जाऊंगा, ज्यादा देर बैठना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये कहते हुए उसने अयान को भी कमरे में जाने को कहा। ठीक है भाईजान, अयान ने कहा। जिस तरह प्यार से वो दोनों भाइयों के सवालों के जवाब दे रहा था, उसे देखकर उसकी अम्मी अब्बा खुश थे। आरिफ मुस्कुराया। ज़ारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, बाहर से आती थी मीठी मी हंसी और बातचीत की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। ये वही लिविंग रूम था जहाँ सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उसका मन भी हो रहा था कि उठकर चली जाए, कुछ बातें कर ले, हंसी में शामिल हो जाए, मगर फिर दिल ने उसे रोक दिया। नहीं, ये घर कभी तेरा अपना नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उसने तय कर लिया, अब बहुत हो गया, वो हॉस्टल चली जाएगी, वहाँ कम से कम कोई उसे अजनबी निगाहों से नहीं देखेगा। शाम को चाय का समय होते ही हवेली के लॉन में हलचल बढ़ने लगी। नावेद साहब अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे, चश्मा लगाए हुए अखबार पढ़ रहे थे। उनकी बेगम भी आकर पास बैठ गईं। सारा और लोग भी बातचीत में शामिल थे। नुसरत बेगम नौकर के साथ चाय की ट्रॉली लेकर पहुंची, तभी गेट से धीमे धीमे कदमों की आहट आई। जोया थी, उसके चेहरे पर जैसे कोई ठहरी हुई थकान थी। आओ बेटा बैठो, चाय पी लो, नावेद साहब ने उसे देखकर कहा। जोया ने हल्की सी मुस्कान दी और बैठने से पहले धीरे से कहा, मैं बस आपको बताने आई थी कि मैं कल सुबह हॉस्टल जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि अयान अभी भी शांत था। सबको डर था कि जोया को देखकर वो भड़क सकता है, और इस समय उसका शांत रहना बेहद जरूरी था। कौन हॉस्टल जा रहा है? अचानक पीछे से आवाज आई। असल में अयान जो बाहर लॉन में आ रहा था, उसने आधी अधूरी बात सुन ली थी। मैं सुबह हॉस्टल जा रही हूँ, जोया ने उसे देखकर धीरे से कहा। क्यों? अयान ने सवाल किया और फिर अपनी बात संभालते हुए बोला, हम दोनों के बीच चाहे जो भी हो, मगर तुम मम्मी और अब्बा की जिम्मेदारी हो। अगर हॉस्टल जाकर रहोगी तो सब अब्बा से क्या कहेंगे? इतना कहकर वो पास पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। बस मैं थोड़े दिनों के लिए जाना चाहती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा, जोया ने कहा। असल में वो किसी भी बहाने से यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वैसे बात तो सही है बेटा, नावेद साहब बोले, अगर तुम जाओगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? यही कि बिन माँ बाप की बच्ची को घर से निकाल दिया, तुम यहीं रहो। नावेद साहब उसे कभी हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे। जब अयान ने खुद उससे पहले बात की थी, तब भी उन्होंने उसे रोक लिया था। ऐसा करो बेटा, एक बार तुम रुक जाओ, बाद में हम फैसला कर लेंगे, बेगम साहिबा ने भी जोया को समझाया।
मैड सभी को चाय के कप देने लगी। जया जो वहीं बैठी थी, उसने भी कप पकड़ लिया। वो देख रही थी कि चाय पीते हुए आयान लगातार उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जिस तरह वो उसे घूर रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की, क्योंकि आयान की नज़रों को झेल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसी नज़रों से तो हयान ने उसे कभी नहीं देखा था। उसकी नज़रें हमेशा ठंडी और गुस्से वाली होती थीं, नफ़रत से भरी हुई होती थीं, मगर आज उसकी नज़रें अलग थीं।